संतन तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 14वीं गाथा चल रही है, उसके संदर्भ में एक चर्चा आई थी बीच में के सामायिक करते हुए सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा निद्रा आहार करते हुए मुनिराजों को होती है। तो इसमें लिखा गया ऐसा कैसे हो सकता है, प्रश्न है। एक प्रश्न आया कि ये संभव नहीं लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये प्रश्न की जड़ में हमारी वो मान्यता है जो न मालूम कहां से और कैसे अंदर में घर कर गई है कि निद्रा तो सिर्फ शुद्धोपयोग के काल में ही होती है और बाकी जो शुभोपयोग का काल है मुनिराजों की अवस्था में भी उसमें निद्रा होती ही नहीं है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि एक कैसे हो सकता है, शुभोपयोग से निद्रा कैसे संभव है। लेकिन जो छठवें गुण स्थान में आहार लेते वक्त मुनिराजों को निद्रा होती है वो शुभोपयोग की वजह से नहीं होती है। शुभोपयोग के काल में तीन कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है तो उसके कारण निद्रा का बड़ा संबंध परिणति से है, उपयोग से नहीं है। अभी आप ऊपर की जो पूजना पढ़ रहे थे और उनकी लंबी लंबी जयमालाओं में कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है ये विस्तार से आपने सुना कि बंधने योग कुल 120 प्रकृतियां हैं। पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का बंध होता है, फिर दूसरे गुणस्थान में कुछ 76 कितनी है, कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, बराबर आप ऊपर तक पड़ गए थे। यदि आपने अंत में ध्यान दिया हो तो लिखा था उसमें 11वें 12वें 13वें इन गुण स्थानों में भी एक एक प्रकृति का बंध होता है। 10वें तक तो समझ में कदाचित आ जाए क्योंकि वहां सूक्ष्म लोभ रहता है, राग का अंश विद्वान है कि वहां भी बंध होता है। लेकिन उसके आगे वहां भी बंध होता है। तो ये जो जब इस बंध और अबंध की बात चले और करुणानुयोग और अध्यात्म इन दो में टकराव दिखाई दे माने अध्यात्म कुछ कहे और करुणानुयोग कुछ कहे तो हमें क्या करें। पहले तो हमें अपेक्षा समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि धर्म कांटे पर बात तोली जाएगी तो जो करुणानुयोग में कहा है वो ज्यादा प्रमाणिक है। अध्यात्म के पक्षपातियों को ये बात अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि स्थूल कथन कौन से अनुयोग में है और सूक्ष्म कौन से में है। तो उनका करुणानुयोग में सूक्ष्म कथन है और अध्यात्म में अत्यंत स्थूल कथन है, करुणानुयोग में भी स्थूल कथन है। तो उनका सूक्ष्म और स्थूल का क्या मतलब है। हमको ऐसा लगता है कि गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां का बंध छुट्टी है, क्या हुआ, ये बात तो है स्थूल कि आत्मा में अनंत गुण है, असंग प्रदेश है, ये बात तो है स्थूल। और हम केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा दृष्टि का विषय है, ये बात है सूक्ष्म, ऐसा हमको लगता है। और कहते सूक्ष्म से की बात हम चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में परिभाषा क्या है सूक्ष्म स्थूल की। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी है कि जो अपनी बुद्धिगम्य हो, बुद्धिगम्य कथन करे फिरोसम के अनुसार, उसका नाम है स्थूल कथन। जो केवल ज्ञान गम्य कथन है उसका नाम है सूक्ष्म कथन, तो आत्मा में अनंत गुण है, ये सूक्ष्म है, क्योंकि तुम गिन नहीं सकते कभी। कोई सूक्ष्म ज्ञान वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें आत्मा में जो अनंत गुण बताए हैं वे गिन के बताए हैं, वे तो उसने पढ़ के ही बताए हैं और सुन के ही बताए हैं। समझे ना? अभी ये प्रकृतियां किस गुण स्थान में, कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, कौन सा अबंध होता है, कौन सा सत्य होता है, कौन सा असत्य होता है, कौन सी बंध विच्छुक्ति होती है, कौन सी सत्य विच्छुक्ति होती है, किनकी उदय विच्छुक्ति होती है, ये सारा वर्णन केवल ज्ञानगम है। अपने आंख से हम जान के नहीं कह सकते है ना? अभी आपका शुद्धोपयोग की जब बात आती है तो कहते आत्मा सब पर पदार्थों से बिल्कुल हटकर और अपने आत्मा को ही जाने और उसमें ही जम जाए, बस कोई पर पदार्थ उसके ज्ञान का ये नहीं बने, तो हम कहते शुद्धोपयोग है या अध्यात्म का शुद्धोपयोग है, स्थूल शुद्धोपयोग है। और आप बोलिए सातवें गुणस्थान के ऊपर तो सब शुद्धोपयोग ही है ना, सातवें गुणस्थान के ऊपर जाते हैं सातवें में शुद्धोपयोग है, आठवें में शुद्धोपयोग है। और लिखा है तत्वार सूत्र में कि श्रेणी में भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। ये संक्रांति क्या है जानते हैं? हम तो वो जानते 14 जनवरी को आती है वो संक्रांति, क्यों 14 जनवरी को जो संक्रांत आती है उसको हम संक्रांति समझते हैं, लेकिन संक्रांति का मतलब होता है पलटना। तो 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। फिर 14 फरवरी को कुंभ संक्रांति में आएगा, तो कुंभ में आएगा तो 14 फरवरी को होती है कुंभ संक्रांति। फिर आगे ऐसे लगते जाना, फिर होगी 14 मार्च को मीन संक्रांति, फिर मेष संक्रांति, फिर वृष संक्रांति। आप समझिए ना, 12 संक्रांति होती है साल भर में। और अंग्रेजी पंचांग वालों ने क्या किया कि फिक्स कर दी कि जिस तारीख को संक्रांति हो, सूर्य का मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाए, उस दिन की 14 तारीख नक्की कर दी और कोई सा महीना होगा खत्म। अब उसका हिसाब कैसे बैठाया, कोई 31 महीना कर दिया, कोई 30 कर दिया, कोई 28 कर दिया, कोई 29 कर दिया, ख्याल में है ना? लेकिन वो हिसाब उन्होंने वहीं का वहीं समाप्त कर दिया। और जो इंडियन का पंचांग है अब उनके 30 दिन का तो महीना, और 12 महीना 360 दिन होते हैं, और 1 वर्ष होता है 364 दिन, 64 ऐसा कुछ होता है, 64 और 65 के बीच में होता है, ख्याल में है ना? तो उनके वो बीच में ये तिथि बढ़ गई, ये तिथि घट गई, ये तिथि ऐसी हो गई, इस तरह से वो पूरी करते हैं। और वो घटाने बढ़ाने का नियम क्या है कुछ मालूम? ये रहते हैं कि 60 घड़ी का 24 घंटे होते हैं, तो कौन सी राशि पे चंद्रमा, देखो महीना होता है चंद्रमा की तरफ से, दिन होता है सूरज की तरफ से, वर्ष होता है सूरज की तरफ से, उत्तरायण दक्षिणायन बताया था ना रात को आपको, आपने देखा होगा अपने घर में देखना कि जब सर्दी के दिन होते हैं ना दिसंबर वगैरह, तो सूरज दक्षिण की तरफ होता है, उसे बोलो दक्षिणायन। और जब भी गर्मी आएगी ना तो सूरज उत्तर की तरफ जाएगा, उसे बोलते हैं उत्तरायण। अयन माने होते हैं 6 महीना, जैसे अपने बोल वर्ष माने 12 महीना होते हैं ना, समझे ना? उसको अयन माने होता है 6 महीना, तो उत्तर अयन और पूर्व अयन, समझे ना, दक्षिण अयन, ऐसा अर्थ है उसका। तो अब वो कैसे घटाते हैं, वो 60 घड़ी होती है ना एक दिन में, तो जिस दिन 31 घड़ी हुई उस दिन को वो अष्टमी मान लेंगे, जिसमें 29 हुई उसको नहीं मानेंगे। अब दोनों में 30-30 हो गई तो 2 तिथि एक साथ हो जाएंगी, अथवा ये कहेंगे एक तिथि का 6 हो गया दूसरी तिथि आगे की, समझ में ना? फिर भी इनका गणित बैठता नहीं है, तो 64 और 65 का चक्कर है ना जतीश भाई, 364 365, तो 4 साल में फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो 1 महीना लौंड का ठोक के तो 1 महीना बढ़ा देते हैं ना, और वो हिसाब किताब पूरा करते हैं, और बहुत काल बाद कभी कभी उल्टा हो जाता है तो कभी 1 महीना गायब भी कर देते हैं। अब ये जो सब ये जो गुणस्थानों का है ना, तो उसमें लिखा कि आठवें गुणस्थान में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और एक संक्रांति होती है। ये संक्रांति क्या है? समझता है? पलटना, समझे ना? तो क्या पलटना? कि जब हमारे ज्ञान का गेय स्वद्रव्य पर है, ज्ञान का गेय स्वद्रव्य बन रहा है, तो वो ज्ञान का गेय स्वद्रव्य हटकर और परद्रव्य बनने लग जाए प्रकाश भाई, तो उसको बोलते हैं अर्थ संक्रांति। क्योंकि स्वद्रव्य तो एक ही है, तो जब अर्थ संक्रांति होगी इसका मतलब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर उपयोग को जाना। तो स्व से पर पे जाएगा, पर से स्व पे जाएगा, पर से भी पर पे जा सकता है, क्योंकि पर तो अनेक है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति क्या है? व्यंजन माने पर्याय, तो एक पर्याय से उपयोग दूसरी पर्याय पे जाए तो व्यंजन संक्रांति है। और योग संक्रांति मन से वचन पे, वचन से काय पे, तो उसका नाम है योग संक्रांति। तो इस शुद्धोपयोग के काल में तीनों संक्रांतियां होती हैं, इसका मतलब उपयोग बदलता रहता है। अगर द्रव संक्रांति होती है तो दूसरे द्रव पे जाए बिना द्रव संक्रांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपना आत्मा तो एक ही है। इसलिए करुणान योग के हिसाब से शुद्धोपयोग में परद्रव्य भी जानने में आते हैं। कभी स्व कभी पर, ऐसा नहीं कभी स्वामुख्य और कभी परमुख्य। जब परमुख होता है तब भी स्व जानने में आता है, जब स्वामुख होता है तब भी पर जानने में आता है, क्योंकि उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो इसलिए जो हमारे दिमाग में ये बात हो गई कि शुद्ध उपयोग में आत्मा के सन्मुख उपयोग रहता है और उससे ही निद्रा होती है, आत्मा जानने में आता रहे तो निद्रा होगी नहीं तो नहीं होगी। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ना आप ध्यान से पढ़ा हो तो। गुरुदेव श्री तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को उतना ही बड़ा ग्रंथ मानते हैं जितना समय सार, और उनके जीवन परिवर्तन में समय सार के साथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बहुत बड़ा हाथ है। ये समय सार लगा था 72 में उनके हाथ, 78 में, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक लगा था 82 में। तो आपने पहले तो समय सार लगा दे, उससे ही पलट गए। क्या पलटे? पलटे तो वे 91 में है जाकर के, नहीं आया समझ में। जब उन्होंने मोहपत्ती उतारी भगवान पारसनाथ की मूर्ति के सामने महावीर जयंती के दिन, तब उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया। अंदर चित्त में बात आ गई होगी कि दिगंबर धर्म सच्चा है और जहां मैं हूं वो गड़बड़ है, लेकिन वो दिगंबर धर्म में डंके की चोट को धारण करने में उन्हें 13 वर्ष लगे। बहुत आसान काम नहीं है वो आध्यात्मिक क्रांति। ये जीवन में संप्रदायों से हम इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि हजारों लोग आज भी ऐसे मिलेंगे कि वो अंदर से पूछे तो कहते हैं भाई बात तो सच्ची दिगंबर ही है, आप ही लोग कहते हो वही है, लेकिन लेकिन अब समाज का इसका उसका न कितने कितने चक्कर हैं। तो दोनों ही मिल गए ना, और दोनों को स्वाध्याय करते रहे कराते रहे, तब जाकर फाइनल डिसीजन पड़ा गया, जो कुछ हो सो हो, तब मेरे साथ कोई भी नहीं आए। 13 साल तक इसके लिए इंतजार किया है कुछ लोग साथ में हो जाएंगे। जब कोई नहीं हुआ तो कहते सिंह तो अकेला ही जंगल में विचरण करता है, और छोड़ के अकेले हो गए, फिर भले ही भीड़ इकट्ठी हो गई हो। आपके बापू जी भी बाद में आए, सुमन भाई। तो इसलिए जो ये शंका का मूल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो निर्जरा का नियम है, कर्मों के झड़ने का, उदय का अभाव जिसे अपन बोलते हैं, अथवा जो वो तो परिणति के हिसाब से है। एक आदमी को आज 1,00,000 रुपए की इनकम हो गई तो उसे अरबपति कह सकते हैं, और आज 1 रुपए की भी इनकम नहीं भई और 1,00,000 रुपया उसके पास है तो वो अरबपति है कि नहीं है? वो उसकी संपत्ति है। 3 कषाय के अभाव से और मिथ्यात्व के अभाव से जो 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान के योग्य निर्मल परिणति हुई है, असली नियामक तो वो है निर्जरा की। अब 4थे गुणस्थान वाले के सिर्फ मिथ्यात्व अनंतानबंदी के कषाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है, और 6वें गुणस्थान वाले के 3 कषाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है। कितना फर्क है बोलिए। इसलिए आहार करते हुए मुनिराज को ज्यादा निद्रा है पर आत्मध्यान करते हुए सम्यक दृष्टि को कम निद्रा है। पर मिथ्या दृष्टि सामायिक में बैठ जाए और ध्यान का ढोंग करे तो उसे तो होगी, उसे भी तो होगा थोड़ी बहुत, तो उसे कहते बिल्कुल नहीं है, मिथ्या दृष्टि को बिल्कुल नहीं है। कल बताई थी, अब भूल जाते हैं आप लोग तो क्या करें। टोडरमल जी ने गोमठ सार की टीका में एक प्रश्न किया कि आप कहते हो कि 11 स्थान हैं काय के असंख्यात गुणी निर्जरा के, असंख्य गुण निर्जरा है बात है ना, 11 स्थान हैं, उसमें पहला स्थान सम्यक दृष्टि का, दूसरा स्थान वृत्ति का, तीसरा स्थान छठवें गुण स्थान वाले का, चौथा स्थान अनंतानंदी के साय का विसंयोजन करने वाले का, ऐसे ऐसे हैं 11 हैं स्थान। तो उन्होंने कहा पहले में तुम अनंत गुणी असंख्य गुणी निर्जरा कहते हो, तो असंख्य गुणी निर्जरा पहले में किससे गुणन फल लगाए, मिथ्या दृष्टिकोण निर्जरा है नहीं। तो 0 में असंख्यात का गुणा करो चाहे संख्यात का करो चाहे अनंत का करो, फल तो 0 ही है, और उससे असंख्यात गुणी है माने असंख्यात 0 निर्जरा है। तो इसका मतलब यह है कि सम्य दर्शन के पहले भी निर्जरा होनी चाहिए। क्यों ये सिद्ध किया उनने, और उन्होंने कहा किसके, ये जो सम्मुक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है कर्ण लब्धि वाला, तो कर्ण लब्धि वाले के भी निर्जरा शुरू हो जाती है, और उससे असंख्य गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान में होती है। तो अब गुरुदेव श्री के जब दिमाग में ये बात आई, और ये कृष्ण वहां भी बहुत खड़े हुए जिनने गुरुदेव श्री का समागम किया है ज्यादा, वो शायद जानते होंगे, लेकिन असली दिक्कत तो एक हमारा ध्यान नहीं जाता है कि जैसे अभी ये पढ़ रहे थे अब छह प्रकार का सम्यक दर्शन, वो नहीं आ रहा था ध्यान में, अब ध्यान में दिलाया है तो आ गया है, लेकिन उसमें से एक आध दो को याद रहेगा, तो द्वारा विधान कराएंगे तीन लोग मंडल का और संजीव द्वारा पूछेगा, तो फिर भी सब लोग हाथ नहीं उठा पाएंगे, अरे आपकी तो क्या पंडितों को भी पता नहीं है कैसा कौन से वेद कौन से हैं सम्यक दर्शन के, मिथ्यात् तो, सासादन मिश्र अवृत सम्यक अवृत सम्यक तीन उपसम छह उपसम है कि मिथ्यात् तो सम्यक दर्शन का भेद, वो सम्यक् मार्गणा के भेद हैं। जब हमें सम्यक् की दृष्टि से जीवों की खोज करनी है श्रद्धा गुण की अपेक्षा, तो वे जीव कहां कहां मिलेंगे, कुछ मिथ्या दृष्टियों में मिलेंगे, कुछ सासादन में मिलेंगे, कुछ मिश्र में मिलेंगे, कुछ उपसम सम्मत दृष्टि मिलेंगे, कुछ छह उपसम मिलेंगे, कुछ छायक मिलेंगे। तो ये आई तो बात सब में है, तूने आपने जयमाली पढ़ ली तो 14 गुण स्थानों में कितनी की पंक्तियों का कहां बंद होता है किसको याद है, क्यों पूजा में कुछ याद करने की चीज थोड़ी होती है, वो करनी हो तो कर लेते हैं और बोलते जाते हैं, वो समझने की चीज थोड़ी पूजन में कुछ होती है। तो अब वो अपनी बात चल रही है कैसे होती है वो निर्जरा, तो गुरुदेव के सामने ये प्रश्न आया और चर्चा हमें मालूम है हमें सब ख्याल में है और उनके प्रवचनों में भी होगी। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले तो शुद्ध उपयोग है ही नहीं है ना, तो फिर निर्जरा शुभभाव से निर्जरा माननी पड़ेगी, फिर उन्हें शुभभाव से निर्जरा होती है ऐसा मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहां जो स्वभाव है उससे नहीं होती है, कि वहां जो उनकी दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव की तरफ है उसकी वजह से वो निर्जरा होती है। तो दो बातें बिल्कुल अलग अलग हो गई, स्वभाव से निर्जरा होना और स्वभाव के काल में निर्जरा होना। कह रहे हैं कि स्वभाव के काल में निद्रा हो सकती है, स्वभाव से निद्रा नहीं होती, ये भेद विज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से समझें तो अच्छी तरह समझ में आएगा। एक मैं प्रश्न पूछता हूं, जरा सोच के मन में ही जवाब देना, आपके चित्त में उत्सुकता जगाने के लिए पूछता हूं, ब्रह्मचारी के बाल बच्चे हो सकते हैं कि नहीं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, उत्तर आप लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा फटाफट एक सेकंड में, सोचने की जरूरत नहीं है, और वो होगा पांच बाल बाल ब्रह्मचारी के बाल बच्चे कैसे हो सकते हैं, ये असंभव बात है ना। लेकिन हमने तो ब्रह्मचारियों के बाल बच्चों को देखा है। घबराना नहीं, क्यों? जब ये बात मैंने सबसे पहले उज्जैन में कही तो वहां प्रोफेसर हरिंद्र भूषण जी बैठे थे, जो विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और वो ब्रह्मचारी छोटे लाल जी के लड़के थे। मैंने कहा, बोलो एक प्रोफेसर साहब के पिताजी का नाम क्या है? तो कहा, ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। क्या आप लग क्या कह रहे? जब ब्रह्मचारी लेने के बाद बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन जब ब्रह्मचारी नहीं लिया था तब तो बच्चे हो सकते हैं ना, और बच्चा होने के बाद गर्भ रहने के बाद वो ब्रह्मचारी ले सकता है कि नहीं, तो उसे ब्रह्मचारी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? तो बाप का नाम लिखाएगा तो वो पेचा लिखाएगा, अब वही नाम लिखाएगा कि दूसरा नाम लिखाएगा? कोई बोलिए कि तुम क्या बात करते हो, ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे नहीं होते? बाल बच्चे तो तीर्थंकरों के भी होते हैं, हम मोक्ष में चले गए उनके भी होते हैं, आदिनाथ के थे ना जो भरत दरबार में। मेरे कहने का मतलब है, तो मोक्ष में भी चले जाए कौन, बेटे और बाप दोनों ही, तब भी हम बाहुबली और भरत के पिता का नाम ऋषभदेव था, तब भी ये व्यवहार इस जगत में चलता है। साहब ये क्या आप व्यवहार की बात ले चुके, इसमें क्या दम है? एकदम सफेद धूल। अरे भाई, सारा प्रथमा नियोग इस पर ही खड़ा है। क्यों? उनको तो अरबों वर्ष मोक्ष गए हो गए, और आज भी जब हम आदि पुराण महापुराण पढ़ते हैं, क्यों, तब उसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैं तो कहता हूं कि हृदय के अंदर एक चोर और है। क्यों वाल्डन जी साहब, बता दूं? निश्चय की बात करते हैं तो लोग कहते हैं तुम बहुत गहरी गहरी बात हो गई, निश्चय की हो गई। व्यवहार की बताते हैं तो उससे ज्यादा घबराते हैं। क्यों? देवलाली में इस बात पर झगड़ा हो गया कि साहब मेरे को इनने 25,000 में शांतिनाथ भगवान दिए थे। जतीश भाई, मैं नाम बता सकता हूं उस आदमी का जो मेरे पास आया था, और अब ये पलट गए, अब मेरे को मल्लीनाथ पकड़ा दी। मैंने बहुत समझाया कि 24 तीर्थंकर एक से होते हैं, इसलिए आप कोई विकल्प मत करो, इसमें क्या है? आपने 25,000 रुपए दान में दिए हैं, अच्छा काम किया है, उससे मंदिर बनेगा, ये सब काम होंगे, ये सब उसी से होते हैं। जो जो भगवान के भगत हैं वो ही बनाए, कोई भगवान तो लाके देने वाले हैं नहीं, लेकिन आप उसमें कोई संत नहीं, नहीं मेरे को तो पंडित जी आप वही दिला दो, वही दिला दो। इतना राग तुम्हें क्यों है कि मेरे बेटे का नाम शांतिलाल है? हो गया काम खत्म? बोला, हमारा व्यवहार कितनी कितनी जगह से प्रभावित होता है, समझ में आ रहा आपकी? मैंने हमें कहां भगवान भगवान है, हमें तो वहां अपना बेटा दिखता है, अपना बाप दिखता है, अपना भाई दिखता है, खुद का ही नाम शांतिलाल हो तो फिर कहना ही क्या है? अब देखिए, इस मंदिर में 3 मूर्तियां विराजमान करते हैं, चक्रम के साथ 3 मूर्तियां, भगवान आदिनाथ एक तरफ, बाहुबली एक तरफ, भरत, कितना अच्छा लगता है। क्यों नहीं, एक तरफ आदिनाथ होते फिर बीच में इधर कुंथनाथ होते और उधर मल्लीनाथ होते तो बुरे लगते हैं? मैं आज जानना चाहता हूं कि इसमें क्या बुरे थे और ये क्या अच्छे हैं? क्यों नहीं, देखो बीच में पिताजी दोनों तरफ जो, अभी तुझे पिताजी और बेटे के दिख रहे हैं, अभी अभी तेरे को भगवान नहीं दिख रहे तीनों। अपने चित्त के पीछे का चोर हम पकड़े, क्यों? गांव गांव में ऐसे भारत बाहुबली और आदिनाथ नहीं खड़े हैं, और उसके पीछे क्या है जो मैं कह रहा हूं? अपना परसेंटेज आप निकाल लेना अपने मन से, क्योंकि बीत राग भाव से खड़े हो गए हैं कि इसमें कोई राग भाव ने काम किया था। कि साहब हमारे यहां तो हमने अलग रखे, साहब ये नहीं रखे, क्या रखे? शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरेनाथ, बहुत जगह मिलेंगे, आज भी कई जगह पुराने 500,000 वर्ष पुराने भी है, तीनों की जोड़ी बहुत है ना। ये क्यों रखे तुमने, इनका चुनाव क्यों किया? कि तुमने जी साहब तीनों तीर्थंकर और तीनों चक्रवर्ती और तीनों मतलब तीन तीन पद के धारी, अकेले तीर्थंकर के क्यों नहीं हम? बोलो सोचो आप क्या है। तो अभी तेरे को चक्रवर्तित्व की महिमा आ रही है, कामदेवत्व की महिमा आ रही है, तीर्थंकरत्व की महिमा आ रही है, जिनेन्द्र भगवान जो तीतरागी सर्वज्ञत्व की महिमा कहां आ रही है? तुझे तो कहीं ना कहीं जोड़ी खोजना है, किसी ना किसी तरह से जोड़ी बनाना है। ये जोड़ी वाली प्रवृत्ति वाले लोग जो है ना, बिना जोड़ा के पूजा में भी बिना जोड़ा के खड़े नहीं हो सकते क्यों? तो जिन्हें जोड़ी वाले प्रवृत्ति हैं, वो कहीं ना कहीं से जाकर जोड़ी बनाए बिना रहेंगी नहीं। अब उसमें कोई लौकिक प्रयोजन, लौकिक राग ही काम करता है, तो व्यवहार तो ही ऐसा है कि चलेगा। इसको हम कहां रोक सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हम तो यही कर सकते हैं कि भाई उन्होंने मान लो किसी गलत से किया हो, और हमारे लिए तो शांतिनाथ, तुंतनाथ, अरयनाथ तीनों एक से हैं, भरत और बाहुबली सब एक से हैं। क्यों? पहले मुझे बाहुबली मिल गए थे और फिर मेरे गले भरत पड़े। भरत ही बहुत अच्छे हैं, क्यों जीते नहीं? भरत भगवान कौन से बुरे हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो ये रागी जीव कहां कहां अपना राग जोड़ता है। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। हमारे अशोक नगर में मैं रहता था, तो एक वहां पर चौधरी मोतीलाल जी थे, तो उन्होंने भगवान आदिनाथ की मूर्ति वहां विराजमान की थी। रोजिना भगवान आदिनाथ की पूजन वो करते थे। वो एक सौगाणी जी थे, तो उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान की थी, तो वो चंद्रप्रभु भगवान की हम रोजिना पूजन करते थे। अब भाग्य से तीनों हम बीमार पड़े, दोनों वे सेठ और तीसरा में। तो वो सेठ गए, कोई बम्बई गया ऑपरेशन कराने, कोई इंदौर गया और मैं भोपाल गया। तो तीनों का ऑपरेशन होके आया और हमें फिर महीना दो महीना बाद तीनों एक साथ मंदिर में मिले। तो वो सौगानी जी बोले कि पंडित जी बस चंद्रप्रभु भगवान ने बचा लिया। मैं तो बहुत हालत खराब थी, ये हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, चंद्रप्रभु भगवान ने बचा लिया था। उतना में वो बोले, हमने दाऊ दाऊ कहते थे, दाऊ बोले पंडित जी आदिनाथ की कृपा से सब ठीक हो गया। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बच गया। मेरे कहने का अर्थ ये है, मैं जो आपसे कहता हूं तो थोड़ा सा आपको हंसी आती है, कहने का स्टाइल है, लेकिन मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि वो अज्ञान अपने अंदर से हम निकाल दें। तो ऐसा धर्म नहीं करें कि कोई मैं मंदिर को दान देने के विरुद्ध हूं, कि मैं मंदिर की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो जो गुरुदेव सिंह ने जिस पुण्य पर इतने दंडे मारे हैं, और मुश्किल से हमारे चित्त में से उसकी थोड़ी सी महिमा कम करी है, अब फिर हम उसकी बढ़ाना शुरू नहीं कर दें। जिस लोभ करने के लिए हम पूजा पाठ करने भगवान के आए हैं, मंदिर में आए हैं, वो लोभ दिला करके हम कोई बात नहीं करें। बस इतनी सी बात है और ज्यादा नहीं अर्थ समझ लेना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी के विरुद्ध नहीं है, कोई के नहीं है, मुझे कोई झगड़ा नहीं किसी से, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं करें, तो अभी गुरुदेव को गए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और गुरुदेव से समागम करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, तो उस वक्त यदि तकनीर सुरक्षा हो पाई तो बाद में क्या होगी? अगर मूर्तियों से, फोटियों से, गुरुदेव की स्टेचुओं से धर्म, गुरुदेव के तत्व ज्ञान की सुरक्षा होगी कि गुरुदेव के तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान की सुरक्षा होगी? तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, तो जब ऐसी कुछ बात आती है तो मेरे चित्त में ऐसा आता है कि भाई इस बात का निषेध किया जाना चाहिए। किसी से कोई बैर विरोध की बात नहीं है भाईचंद जी, और ना आपकी व्यवस्थाओं में मुझे कोई हस्तक्षेप करना है। जो आप इतना जितना मुझे क्या लेना देना उसे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यदि हम उसके पुण्य के गीत नहीं गाएंगे तो भी पैसे की कमी आपको पड़ने वाली, कलकत्ते में तो पड़ने वाली नहीं, उनके सारे देश में कहीं भी पड़ने वाली नहीं है। फिर पैसा हावी ना हो जाए, जिस पैसे वालों को गुरुदेव से ने ढूंढ ढूंढ कहकर के ऐसे किया ऐसे किया, इतना उसकी महिमा घटाई और ज्ञान की इतनी महिमा बढ़ाई। ये जो पूछे ना गुरुदेव की सभा में बैठने वाले बीड़ी वाले सेठ सागर वाले है ना भगवान दास जी, और ए सेठ कभी सेठ जी मुंह से निकला हो तो बता देना, ए बीड़ी वाला सेठ वो गोदिका अमेरिका में जाके वहां मरता है, गोदिका जी कभी कहा हो तो बता दो मुझे। और मेरे दादा की उम्र के थे गुरुदेव भी और वो भगवान दास सेठ भी, और मैं 20-22 वर्ष का वहां पहुंचा तो मुझे कभी पंडित जी के अलावा नहीं बोला। उन्होंने ज्ञान की महिमा कितनी बढ़ाई, ख्याल में है ना, और धन की महिमा कितनी कम करी, पर हम फिर उस धन पे चढ़ जाए। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु, धन समाज गज राज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहा है। सिर्फ इतनी ही बात है कि पंडित हुकुमचंद के सम्मान करो ये बात नहीं है, तो सेठियों का सम्मान नहीं करो ये बात नहीं है। ये तो गुरुदेव के प्रताप से हमको तो इतना सम्मान मिला है, इतना सम्मान मिला है कि अभी वो उसकी अभी ऐसा नहीं रहा, वो गुरुदेव ने जितना सम्मान दिया है उतना आप क्या दोगे, क्या है आपके पास जो आप दोगे। गुरुदेव खुद फरमाते थे 1000 अज्ञानी हमें भगवान कहें उसकी कोई कीमत नहीं है, और एक भगवान के मुख से भव्य निकल जाए तो उसकी कीमत है। और मैंने धर्म के दर्शन में यह वाक्य लिखा है, किसने कहा इसकी क्या कहा इसकी कोई कीमत नहीं है, किसने कहा इसकी कीमत है। ये अज्ञानी जगत हमें भगवान भी कहे तो क्या कीमत है, और गुरुदेव जैसे के मुख से पात्र छे इतना ही निकल जाए तो हम निहाल हो जाते। उस लड़की का प्रश्न है कि कैसे हो सकती है निर्जला, तो मैंने कहा कि निर्जला शुद्धि के हिसाब से होती है, जब उपयोग होता है तो थोड़ी बहुत वृद्धि उसमें होती है। जैसे मैंने बोला ना कि 1 अरब रुपया बैंक में जमा है, 1 करोड़ रुपये महीने का इनकम आपके यहां आ रही है, और फिर आप 10,000 की नौकरी कर लें, हैं ऐसे लोग जगत में, तो कितनी होगी इनकम, 1,10,000 की हो जाएगी, अब समझ लो क्या इनकम है। और नौकरी छोड़ देगा तो कितनी हो जाएगी, भूखों मर जाएगा। अरे जिसकी आजीविका उस नौकरी से ही चलती है उसकी बात जुदी है, लेकिन जितनी संपत्ति का मालिक हो गया, जो 3 कसाई के अभाव रूप शुद्धि का मालिक हो गया, तो ये जो लिखा है जो अभी गुणस्थानों के हिसाब से बंद विच्छुति, ये परिणति के हिसाब से, ये गुणस्थान परिणति के हिसाब से नहीं, उपयोग के हिसाब से शुद्धों के होते, 4थे में भी होता है, 5वें में भी होता है, 7वें में भी होता है, 8वें में भी होता है, 7वें में नहीं होता है, बोलो तो बड़ा गुणस्थान कौन है, 4था के 7वां, उसमें शुद्ध उपयोग होता नहीं है, और 4थे में और 5वें में होता है, और निर्जला उसके ज्यादा है। तो हम निर्जला का हिसाब समझेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा अब इसकी कीमत ज्यादा क्यों है, फिर शुद्ध उपयोग की महिमा ज्यादा क्यों है। तो महिमा ज्यादा इसलिए है कि इससे शुद्धि में वृद्धि होती है, परिणति की शुद्धि में वृद्धि होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझें, लोग समझते भी बहुत कठिन हो, कठिन नहीं है बिल्कुल। अपने एक पानी की टंकी है, पानी भरते हैं जिसमें ऊपर, तो उसमें एक अपन ने नल लगाया है 5 इंची, मतलब जिसमें से इतना पानी गिरता है, 1 इंची का समझ लीजिए, 1 इंची मोटा नल लगाया है, इतना पानी उसमें से टंकी वो 1 घंटे में भर जाती है। उस नल को हम चालू कर दें और पानी आए तो 1 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब नीचे हमने उसके 5 नल लगाए सप्लाई करने की, लेकिन वो इतने छोटे छोटे हैं जब वो 5ों नल खोलें तो 1 घंटे में टंकी खाली होगी। अब हम 6 ही नल खोल दें तो क्या होगा, जितना पानी आएगा उतना निकलता जाएगा, भरने का कोई सवाल ही नहीं, समझ में ना। तो अब वो हमने नीचे के नल बंद रखे और ऊपर का नल चालू रखा तो 1 घंटे में टंकी फुल हो गई, अब क्या टंकी आधी हो गई, पौन हो गई, तो पानी कितना है टंकी में ये उसके लेवल से माना जाएगा, वो ऊपर की धारा से नहीं माना जाएगा, लेकिन वो ऊपर का नल उसकी लेवल को बढ़ाने में निमित्त है। और नीचे के नल उसको खोलने में निमित्त है। तो ये पर की तरफ उपयोग जाना, ये नीचे के नल खोलना है, और अपने आत्मा में उपयोग जाना, ये ऊपर का नल सप्लायर वाला नल खोलना है। बस इतनी सी बात है, लेकिन निर्णय होगा पानी कितना है, तो उसमें नीचे निशान लगा रहता है ना, ये इतना लीटर से मान लो 100 लीटर की पंक्ति है तो आधा लीटर से निशान बना रहता है ना। तो आप उस निशान को देखकर अंदर लेवल देखोगे कि ऊपर से पानी गिर रहा है वो देखोगे। जब पानी ऊपर से आ रहा है तो फुल टंकी क्यों, ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। तो वो जो शुद्धि की जो निर्णय है वो परिणति के हिसाब से होती है, और जो कोई चीज थोड़ी स्थायी होती है उसके हिसाब से डिसीजन होता है। ये क्षणिक पर्याय के हिसाब से डिसीजन थोड़ी होता है। अब एक क्षण धर्मात्मा एक क्षण में पापी, एक क्षण धर्मात्मा एक क्षण में पापी, फिर क्या करोगे मुनि? आत्मा का ध्यान करने जाएंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे, और फिर बस शुभ उपयोग में आएंगे तो पापी हो जाएंगे, फिर आपके लिए आहार करने वाले आएंगे तो महापापी हो जाएंगे, तो आप महापापियों को आहार देते हो क्यों? बोलो। अरे यहां तक लिखा है चरणानुयोग में, मैंने गुरुदेव के मैं अभी अभी पढ़ा है प्रवचन सार का चरणानुयोग सूचक चूल कहा, अभी अभी मैं लिख के पूरी करके आया हूं ना, तो मैंने गुरुदेव के सारे देवधन सार को 5-7 दफे पढ़ा, कैसे तो सुना, तो उसमें बहुत आता है कि जो उन्होंने कल परसों बताया था ना 179वीं गाथा प्रवचन सार में, उसमें शुद्ध उपयोग वो चरणानुयोग का शुद्ध उपयोग है, जिससे रागादिक का कर्ता बताया, शुद्ध निश्चय नए से रागादिक का कर्ता आत्मा को बताया है। बोले प्रवचन सार में गुरुदेव की प्रवचन को मैं पढ़ के आया, देख के आया हूं। तो वो जो प्रथमानुयोग का कथन है, इसका नाम दिव्यानुयोग का कथन, वो बुद्धिगम्य है। तो वो कहते क्या कि जब वो बाहर को एकदम ऐसा अंदर में पहुंचा और ध्यान में लगा है तो सार सब सारी दुनिया को दिखता है कि अपने वो सामायिक में है, तो वो उस वक्त सबसे बढ़िया है, और बस बाहर को उपयोग आया तो वो उस वक्त खराब हो गया बस ये। लेकिन वो करुणानुयोग कहता है कि अभी भी 3 कसाय के अभाव की शुद्धि है, समझ में ना, वो 3 कसाय के अभाव में शुद्धि में कोई फर्क नहीं आया है, वो वहां जानता है, तो वो इसलिए वो कहता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोडरम जी ने प्रश्न किया वहां पर कि ये कैसे हो सकता है 8वें गुणस्थान में ऐसा, तो उन्होंने कहा कि जब वो जो 8वें गुणस्थान में द्रव्य बदला ना, क्या कहा था, उपयोग में द्रव्य बदला तो परद्रव्य आ गया, उस वक्त थोड़ी नजर कम हो जाती होगी, थोड़ी प्रकृतियां बंधने लगती होंगी। बोलो बालचंद जी साहब, कि बराबर होती है तो बराबर होगी ना, यानी उपयोग में परद्रव्य तब भी उतनी निर्जरा, और उपयोग में सौद्रव्य तब भी उतनी निर्जरा, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, ये भी सही नहीं है, सूक्ष्म सुनना है ना। तो अभी देखिए असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, तो असंख्यात हमें निर्जरा माने वो कर्म है, वो झड़ रहे हैं, वो स्टोक ऐसे झड़ जाते हों जैसे पत्तों पेड़ जैसे पत्ते झड़ते हैं, हमें वो ऐसी निर्जरा दिखती है, क्यों ऐसा नहीं। निर्जरा माने आत्मा की शुद्धि, तो शुद्धि माने संवर, और शुद्धि की वृद्धि माने निर्जरा। तो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, उसका अर्थ है प्रति समय असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही है, ठीक हुआ क्यों? अब अभी वो अपना आत्मा उसके ज्ञान का गेय बना है, सुनना, तो जितनी शुद्धि की वृद्धि है, पर अगले समय परद्रव उसके ज्ञान का गेय बन गया तो उतनी ही है कि ज्यादा शुद्धि, असंख्यात गुणी ज्यादा शुद्धि है उसकी। देखो आत्मा जब ज्ञान का गेय था तो असंख्यात्मा भाग शुद्धि थी, और आत्मा के परद्रव ज्ञान का गेय बना तो असंख्यात गुणा शुद्धि की वृद्धि हो गई, और फिर आत्मा बना लौट गई तो उससे असंख्यात गुणी, फिर पर बना तो उससे असंख्यात गुणी। देखो तो कितनी तेजी से घोड़ा दौड़ता है, कितनी अशुद्धि है, कितना नाश करता हुआ कितनी शुद्धि की तरफ भागता है, आप समझे ना। इसलिए स्वद्रव प्रद्रव से है ही नहीं, उन्होंने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ये तो वितराग परिणति के हिसाब से निर्णय होता है, और वितराग परिणति का नाप 3 कसाय के अभाव रूप है, 2 कसाय के अभाव रूप है, 1 कसाय का चौकड़ी के अभाव रूप है, इससे होता है। इसलिए उन नजरा में कोई बाधा नहीं है, ख्याल में, और जो द्रव्यकरण झरने का नाम नजरा है कोई कीमत नहीं है। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न झरना। तो वो कहते वो अपने काल पाकर के कर्म झड़ा, तो उसमें तो कोई दम ही नहीं है, उदय में आके कर्म का खर्जना, उसको भी निर्जरा बोल देते हैं। वो निर्जरा बोल देने से निर्जरा तत्व हो गया क्या वो क्या? अब एक इसमें प्रश्न है जो असलियत में स्पष्टीकरण की बहुत अपेक्षा रखता है, और वो प्रश्न क्या है कि अंदर में जैसे कि जो क्षय सम्मा दर्शन है तो मिथ्या तो अनंत अनवधि का क्षय हो गया, लेकिन जो क्षय उपशम सम्मा दर्शन, उपशम की छोड़ दो वो तो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, फिर क्षय उपशम है तो क्षय उपशम सम्मा दर्शन के काल में अंदर में मिथ्यात्व तो वैसा है और अनंत अनवधि कैसा है वैसी है। तो सत्ता में मिथ्यात्व तो अनंत अनवधि कैसा मौजूद है, तो फिर क्या हुआ कि उदय नहीं आ रही बस खत्म। इसलिए लिखते हैं उसे उदयाभावी क्षय। क्या क्षय समझते किसे कहते हैं? जिसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी और मिश्र इन छह प्रकृतियों माने सर्वघाती प्रकृतियां, इनका उदयाभावी क्षय माने अंदर में तो है लेकिन उदय में नहीं आ रही, तो उदय में वहीं रुक जाए ये तो उपशम में होता है। क्षय उपशम में ऐसा रुकती तो वो है नहीं, अधिक काल तो उसे रोक नहीं सकते हैं। उनका उदय आएगा तो उनकी आयु खत्म हो गई, उनकी स्थिति खत्म हो गई, तो वे तो खिलेंगी, तो वो अप्रत्यक्ष अनावरण के रूप में बदल के खिल जाती है। तो स्टॉक तो खाली हो रहा है ना अंदर से, मेरे मतलब समझे ना, वो स्टॉक जो मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी के प्रकृतियों का है, बंधना तो बंद है क्योंकि बंधने में तो बंध विच्छुति तो चौथे गुणस्थान में हो जाती है। अब तुमने मुझे करुणा नियोग में चढ़ा दिया क्या? 16 प्रकृतियों का बंध विच्छुति पहले गुणस्थान में हो जाती है, और उसमें कौन कौन से? मिथ्ये मिथ्या दावम सोहम मिथ्या तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग सूक्ष्म त्रय स्थावर प्रगति नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी त्रंज गति त्रंज गत्यानुपूर्वी, ऐसी महा खतरनाक जो 16 प्रकृतियां हैं वो छोटे गुणस्थान से आगे निकलते ही बंधना बंद हो जाती है, दूसरे गुणस्थान से आगे निकले तो 25 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं, तीसरे से आगे निकले 4 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं। आपने एक बात पढ़ी हुई थी उसमें पूजन में ध्यान से, तो तीसरे गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का बंद हो रहा था ना, चौथे में उससे 3 ज्यादा का होने लग गया। बोलो किसने किसने पढ़ा था, हाथ देखिए बता सकता है ना? तो क्यों प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि तीसरे गुणस्थान में कम प्रकृतियों का बंद है तो चौथे गुणस्थान में 3 प्रकृतियों का ज्यादा बंद है? आया ध्यान में? तो क्या है कि वहां चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति और आहार दुख आहारक और आहारक अंगोपांग ये दो बंधना शुरू हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा हो जाती है। उदय योग बंधने योग 120 प्रकृतियां हैं, उदय में आने योग 122 प्रकृतियां हैं, उदय में आने योग 148 प्रकृतियां हैं ना, 148 प्रकृतियां हैं। बोलो क्या बंधती 120 है और उदय में आती 148? अब तो लंबा थोड़ा हिसाब है, मैं आपको सुनी उलझाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक गणित जो है जैसे आपने महान सूक्ष्म समझ लिया और वो दिमाग में घुस गया है, ये जो अंदर में जो परिणति की शुद्धि है वो सबसे बड़ी चीज है। देखो एक हम विद्वान हैं, हमने इतने दिनों तक काम किया और एक विद्वान व्याख्यान हमारा बिगड़ गया तो क्या होता, उससे फर्क पड़ेगा? और एक हमारे स्टूडेंट का हमसे बढ़िया हो गया तो उस दिन से हमसे बड़ा विद्वान हो जाएगा क्यों? अरे एक व्याख्यान बढ़ने बिगड़ने से किसी की इज्जत ना बनती है ना बिगड़ती है। उन द हॉल उसका जो वर्क है सारे जिंदगी का, जो स्वाध्याय है प्रवचन है लेखन है पढ़ना है पढ़ाना है, जो उसकी वो इन सबसे हमारी इज्जत बनी है। यदि हमने 50 साल तक ये काम किया उस सबको मिलाकर के हम आज हैं, एक दिन हमारा बिगड़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी विद्यार्थी इसी साल पढ़ के निकल गया है और डटा करके लाया और बढ़िया से बढ़िया लच्छेदार भाषा में आपको सुना दिया क्यों, और उसका बढ़िया हो गया है तो वो हाथी पर नहीं बैठ जाने वाला है। तो ये उपयोग की बात तो ऐसी है, क्षणिक है वो, क्षणिक बात से कुछ नहीं होता। ऑन द हॉल वर्क उसके जीवन का, हमें किसी का नाप करना है, तुलना करना है, देखना है, तो उनका हॉल वर्क देखना पड़ेगा ना उसकी जिंदगी भर का, कि क्या किया उसने जिंदगी में। क्यों? मान लीजिए कि एक आदमी ने पूरा मंदिर बना के खड़ा कर दिया और आज उसने 11,000 रुपया बोले, तो वो छोटा हो गया और 11,000 बोलने वाला बड़ा हो गया। क्यों? मैं बताइए, ये छोटे बड़े का निर्णय ऐसे एक एक तत्काल की एक एक चीज से नहीं होता। ऐसे मुनिराजों का कि उनकी जो उस वक्त इतना जोर का गुस्सा आ रहा हो कि वैसा गुस्सा अपन को कभी आ ही नहीं सकता। मैं बताऊं कौन सा? श्रुत सागर, तुमने क्यों उन मंत्रियों से वाद विवाद किया? कि महाराज मुझे पता नहीं था कि आपकी आज्ञा हुई थी। क्यों? कि उनसे वाद विवाद नहीं करना है। तो पता क्यों नहीं था कि साहब जब आपने आज्ञा करी जब मैं यहां नहीं था तो क्यों नहीं थे? पहला दंड अपराध अनुपस्थिति, उस समय जो सब मौजूद थे आप क्यों नहीं थे? क्यों? तनिषा मैं कल प्रवचन में आया नहीं था, तो इसमें मेरी गलती है कि तुम्हारी? तुमने नहीं सुना तो पहले अनुपस्थित क्यों थे, फिर सुना क्यों नहीं, और नहीं सुना तो श्रुत का सागर इतना नहीं जानता है कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मेरे आज्ञा की क्या जरूरत थी इसमें? वो श्रुत सागर उनकी उपाधि थी, जो उपाध्याय थे पढ़ाते थे इसलिए श्रुत सागर उनकी उपाधि थी, अकंपन भी उनकी उपाधि थी, तो कभी कपड़े नहीं निर्भय होकर रहे, इसलिए अकंपन। समझे ना? कि श्रुत के सागर को यह समझाना पड़े कि रास्ते चलते किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मुझे नहीं थी। जाओ उधर ही खड़े रहो, वे आएंगे और मारेंगे तो तुम्हें भोगना। कितनी कठोर, कितना कठोर सजा है, बोलो। हमें तुम्हें आ सकती है? अपना बच्चा ऐसी गलती करके आ जाए तो अपने कहें तू ही लागे वहां खड़ा रहो, तू ही पिटना मरना, हम नहीं तेरे को हमारे तुम घर में छिपाएंगे तो आगे हमारे घर में उपद्रव करेंगे तो कांच मांच फोड़ देंगे, हमें भी मारेंगे। क्यों बालचंद जी, क्या करोगे? सौभाग्य जी सोचो, आपने यही पढ़ा ना, उन्हें आदेश दिया जाओ खड़े रहो, मेरे चित्त को स्वीकार नहीं हुआ। अकंपनाचारी इतना कठोर आदेश देंगे, मेरे चित्त को स्वीकार नहीं है, इसलिए मैंने एक कहानी लिखी, अक्षम्य अपराध ऐसा किसी कौन सी है जो भी नाम हो उसका, और उसमें मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब वो आएंगे और सारे संघ पर उपद्रव करेंगे। तो श्रुत सागर ने कहा कि मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूं कि मैं जाकर जहां वाद विवाद हुआ है था वहीं जाके खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो रास्ता वही है, वो वहीं से आएंगे तो जो कुछ होगा मेरे पर होगा, संघ पर नहीं होगा। ये प्रस्ताव श्रुत सागर का था, मैंने इसको ऐसा किया, समझिए ना। अकंपन ने नहीं कहा कि तुम जाके खड़े रहो वहां, श्रुत सागर ने कहा कि मैं जाके वहीं खड़ा रहूंगा, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए सर। तो उन्होंने कहा ये आज्ञा मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि श्रुत सागर रोजाना रोजाना पैदा नहीं होते हैं। एक श्रुत सागर कैसे बनता है तुम्हें पता नहीं है, वो स्वयं कितनी मेहनत करता है, गुरु कितनी मेहनत करते हैं, क्यों तब वो श्रुत सागर बनता है। भगवतमन जी भंडारी मेरे पास आए, नाम लेके बोल रहा हूं, घबराना नहीं, कि पंडित जी हमने यहां पर एक बहुत बड़ा शोरूम खोल रहे हैं विमल का, तो आपके जितने विद्वान निकले हुए काम नहीं, आपको दो चार हमारे यहां लगा देना, हम लगा देंगे। मैंने क्या कहा सर जी, मैं आपके विमल के शोरूम के लिए कर्मचारी पैदा कर रहा हूं? नहीं, फिर काम नहीं मिलता ना बेचारे, काम नहीं मिलता उन्हें। मैंने कहा तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें सबसे नंबर एक शत्रु में रखूंगा, मित्र में नहीं रखूंगा। क्यों? मैं 5 साल मेहनत कर करके इनको विद्वान बना के तैयार करूं और तुम कपड़ा बिकवाने में लगा दो। अरे तुम्हें धर्म को पढ़ाने में लगाओ, मेरा मतलब समझे ना। और उसने दोनों ने उस दुकान से ज्यादा तनखा। काम वो करो जो ज्ञान के प्रचार का हो। समझी गोता बैठा मेरा यहां पर, इसके मुंह पर कहता हूं, इसकी जब सादगाई होने लगी तो इसके सास ससुर मेरे पास है, कैसा वो संजीव बोझा कैसा है, उनका बहुत ही बढ़िया है, जीवन लड़का है वो। तो हम ऐसा है, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे ऐसा सोचते हैं। उनका तुम बहुत बढ़िया सोचते हो, लेकिन आपकी तो स्थिति मंजूरी मेरी मंजूरी नहीं। क्या कह रहे हैं आप, सब अच्छा भी कह रहे और मंजूरी भी कह रहे। मैंने कहा हम बना बना के विद्वान तैयार करें और तुम जमाई बना बना के ले जाओ और बड़े बड़े उद्योगों में बैठा लो। एक वो कानपुर वाला राजू ले गया, हमारा विद्यार्थी था, हमारा आत्म धर्म विद्रा विज्ञान निकालता था, जनपद निकालता था, पूरा सहयोग था। उन्हें जमाई बनाया और लेकर फैक्ट्री खुल गई वहां पर जाकर बनियाने बनाने की। वो कोरी बना दिया उसे पंडित से, कोरी समझते जुराहा, बनियाने बुन बुन के बेचने लग गया। अब तुम ले जाओ, उन्हें दूसरा। नहीं नहीं नहीं, हमारी ये प्रतिज्ञा है और हमने दोनों ने आपस में बात कर ली। हमने कहा कि देखो हम शादी करेंगे, सारी सुविधाएं तुम्हारी जुटाएंगे, लेकिन तुम काम नहीं छोड़ोगे, यही करोगे सारी जीवन में, जो खाता पड़े वो मेरे से देने। और हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मंजूरी तभी दूंगे कि जब मेरे से तुम्हें काम नहीं छोड़ाओगे। मैं जिंदगी में काम यही करूंगा। कोई ऐसा साधारण आदमी आपके यहां नहीं आया है, ये कोई पैसे वाला पंडित है नहीं, किसी नौकरी वाला पंडित है, ये 10 नौकर रखे ऐसी इसकी पोजीशन है, सब बात में ख्याल में है ना। लेकिन ये तत्व ज्ञान हमने सीखा है तो हमें जगत के सामने इस तत्व ज्ञान को परोसना, हमें इस काम में लगाना है। मेरे कहने का मतलब है तो सुख सागर रोजाना पैदा नहीं होते, अकंपनाचारी कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं दे सकता। तब वो सुख सागर कहते हैं, सवाल गुरुदेव मेरे को खतरे में डालने का सवाल नहीं है, सवाल संघ की सुरक्षा का है ना, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि आप मेरे को आज्ञा नहीं देंगे तो मुझे आज्ञा आज उल्लंघन करना पड़ेगी तो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं संघ को खतरे में नहीं डाल सकता। कंपनाचारी को भी सुरक्षित रखा, उतना दुष्ट सिद्ध नहीं होने दिया, क्यों कि जा मरना। और सत सागर का भी गौरव रखा और जो घटना घटी वो आपको मालूम है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो इतना गुस्सा मुनिराज को आ गया तो भी वो छठवें गुणस्थान में थे ना उस वक्त, और हमारे सामायिक करने के काल से असंख्य गुणी नहीं, प्रति समय असंख्य गुणी, असंख्य गुणी, असंख्य गुणी, असंख्य गुणी, असंख्य में असंख्यवार असंख्य का गुणा करो उतनी। समझ में आया कि नहीं, असंख्य गुणी का मतलब समझते, प्रति समय का दो में दो का गुणा करो, फिर दो में दो उसका उतना, दो दो गुणा करो कितना आएगा है? चार, फिर चार का चार में करो 16, फिर 16 का 16 में करो, समझ गया ना। एक एक समय आगे, अब वो जो चौथे गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक कैसे पहुंचा है और प्रति समय असंख्य गुणी निद्रा हो रही है, कल्पना तो करो तुम उन मुनिराज की, और तुम्हारी कितनी होगी, चाहे तुम कितना ही आत्मा की तरफ उपयोग लगा के बैठो। इसलिए नहीं बैठना इस अर्थ में नहीं कर रहा हूं, आरंभ तो उसी से होगी ना, बीज तो उसी से पड़ेगा ना। इसलिए भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार बात है। हमारी यदि समझ में नहीं आई है तो हमने उस गहराई से अध्ययन नहीं किया है, उस गहराई से नहीं समझा है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आई है। समय सार की गाथाएं ऐसी नहीं है कि आपने एक दफा पढ़ लिया और समझ में आ गई। गुरुदेव श्री ने 19 बार तो सभा में प्रवचन में पढ़ा, और खुद ही बोलते थे कि अपने अंदर में तो कितनी बार पढ़ा और उपयोग में तो अगणित बार पढ़ा। ये उपयोग में पढ़ना कैसे होता है, ये भी यदि आपका आएगा तीन लोग मंदिर विधान में, कि सोधर में कहीं ना कहीं आएगा पूजा पाठ में, कि सोधर में इंद्र की दौड़ने की शक्ति कितनी है मालूम आपको, कि वो यहां आपके साथ पूजा कर रहा है और ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है, बोल रहा है, और ये आपका हाथ ऊपर गया और लौट के फिर ताली यहां आई तो उसके बीच में तीन लोग के जितने अतिथम चैतन्य हैं उनकी वंदना करके लौट के वापस ऐड आएगा और दूसरी ताल उसमें ताल मिला देगा। सुना सुना कभी नहीं सुना, पूजनों में ही है। मैं कोई पूजनों का विरोधी हूं, मैंने बहुत कम स्रोत भर सत्य विधान कराया होगा, मैं पंडित बन गए लेकिन मैंने खुद कराए हैं तो मेरी प्रधान कराने वाले पंडितों को दो नंबर का कैसे मान सकता क्या? तो ये तो बहुत बहुत, बहुत गजब का काम हो गया। अरे साहब आप शिखर जी जाते हो तो 12-12 घंटा लगाते हैं, मैं 2 घंटे में आ जाता हूं। कैसी करने के 2 घंटे वाले कैसी करते हैं मालूम? नमस्ते भगवान, 2 मिनट की उपासना भी तो नहीं बैठेंगे क्यों? तो ऐसे सौदर बिंद करता होगा। अरे भाई उनकी वंदना की बात नहीं बता रहे, उनकी तो चाल गति कितनी तेज है ये बताने के लिए वो उदाहरण दिया है। वो वंदना का स्वरूप का उदाहरण नहीं है, उसे वंदना का स्वरूप नहीं निकालना। क्या निकालना सुनील जी? कि उनकी कितनी ताकत है दौड़ने की है? लेकिन आचार्यों की बात तो देखो, दौड़ने की ताकत को भी वंदना से बताया है? तो 3 लोग के 43 लोगों की घूम करके वंदना करके आ जाए ऐसा। तो ऐसे ही आप द्वादशांग का पाठ श्रुत केवली अंतर्मुहूर्त में पूरा कर लेते हैं। सुना होगा कि ये तो सुना कि नहीं सुना? कैसे कर लेते होंगे है ना? जब नमोकार मंत्र का भी कहेंगे ना 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ो, तो मैंने भी कोशिश करी है पढ़ने की, तो जब तक मैं 5 बार पढ़ पाता हूं तब तक आप तो जनवाणी माता की जय श्री कर देते। तो आपके छोटे सोधर मिल के नजदीक पहुंच गए, उच्चारण शुद्ध होता ही नहीं है। क्यों? शांति से उच्चारण तो शुद्ध करो ना। कैसा पढ़ना चाहिए इसका विवेक हमको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो वो जो उन्होंने बात कही तो द्वादश अंग का पाठ कैसे करते होंगे, जल्दी जल्दी करते होंगे ऐसा नहीं। तो द्वादश अंग का पाठ अंतर्मुहूर्त में, कि द्वादश अंग की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु पूरी उनके दिमाग में अंतर्मुहूर्त में घूम जाती है, इसका नाम है द्वादश अंग का पाठ। आपको तो मैं अभी 2 मिनट में समय सार का पाठ करके बता दूं पूरा, आपको सत्वासूत का बता दूं, जिसका कहो उसको बता दूं। बोलो पहले दान ने क्या है समझने का स्वरूप, नए प्रमाण फिर उद्देश्य, केवल ज्ञान का स्वरूप नए, दूसरे में 53 भाव, अगर अपने ज्ञान में घूम गए तो फटाफट समय था। लेकिन ये कब होगा? जब समय सार में जीवन लगाओगे तब होगा। आपको तो मैं 1 घंटे में पूरा समय सार सुना सकता हूँ, आपको तो 10 साल में पूरा समय सार सुना सकता हूँ क्या? आपको 10 दिन में सुना सकता हूँ, जितने दिन में कहो उतने दिन में समय सार सुना दू, उतना उसका स्रोत उसका भी स्वरूप हो जाएगा। लेकिन वो विषय वस्तु हमारे दिमाग में घूमना चाहिए। क्यों? बोलो, अभी मैं बताऊं आपको। आत्मा न पर रूप है न पर का स्वामी है, चलो हो गया खत्म जीवाजीवादी का। न पर का कर्ता है न पर का भोक्ता है, कर्ता का नाम अधिकार पूरा, बोलो हो गया है? चाहे कार्य परद्रव्य का कार्य चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करता ही नहीं है। इसलिए उसमें भेद करना भले बुरे का अच्छी बात नहीं है, पुण्य पाप अधिकार पूरा। और क्या आश्रव अधिकार? मेरे कहने का अर्थ है कि आपको 1 मिनट में पूरा समय सार सुना दूं, लेकिन वो कब? जब निरंतर उसके आप गहराई में प्रवेश करेंगे तब। तो ये सब शंकाएं फिर चित्त में खड़ी नहीं होंगी, और चित्त में शंकाएं खड़ी नहीं होंगी समाधान फिर आप दूसरों को समझाने लगेंगे, ऐसा तो।